તારીખ 25/1/1990 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 56 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 13 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
ये दो विषय पर लक्ष्य केंद्रित करने हैं, जो शास्त्रकार का अभिप्राय है, कहीं से बात चलती हो अभिप्राय पकड़ना रहता है, यहाँ क्या क्या कहना चाहता है, किस ढंग से कहना चाहता है, अगर उपयोग ऐसे नहीं चला तो मालूम क्या कहाँ कैसे गलती गलत समझ में आ जाएगी, गलती हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा उपयोग नहीं चला कि ये शुद्धात्मा बताने के लिए विस्तार कर रहे हैं और शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, ये दो ही बात जिसमें प्रधान है, मैंने केंद्र स्थान में ये दो बात है, तो उसी केंद्र स्थान में ही लक्ष्य रखने का है, उपयोग को रखने का है। अगर ऐसा इस तरह से उपयोग नहीं चला तो कहने वाला कहेंगे तो जो कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन समझने वाला तो आप समझेगा, ये बात हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र की तो यही मुख्य पद्धति है, अध्यात्म शास्त्र की तो ये मुख्य बात है कि सिद्धार्थ स्वरूप बताना, तत्व बताना, आत्म तत्व बताना और उसकी प्राप्ति के लिए जो विधि है उसको बताना, यही पद्धति है। और 12 अंक का सार भी यही है, ऐसे देखो तो 12 अंक का सार भी यही है। तो जो कहने का जो अभिप्राय लक्षण के जो कहते हैं उसका अभिप्राय को समझने वाले छोड़ दे तो अन्यथा अभिप्राय से वो अन्यथा समझेंगे, अभिप्राय अन्यथा है तो समझने भी बात अन्यथा हो ही जाएगी। यहाँ तो मूल मुद्दे की बात है कि वेद ज्ञान है वो स्वानुभव की कार्य पद्धति है, इसलिए वेद ज्ञान से ज्ञान और राग को लक्षण भेद से सर्वथा भिन्न करना, ऐसे तो वेद ज्ञान के प्रकरण में 2-3 बातें चलती हैं हमारे मनुष्य समाज में, विज्ञान के विषय में 2-3 बातें हैं। एक तो देहादि परद्रव्य से आत्मा की भिन्नता का विषय चलता है, जड़ चिंतन से चैतन्य स्वरूप की आत्मा ज्ञान प्रभाव आत्मा भिन्न है, एक तो ये विज्ञान के विषय में बात करती है। दूसरी ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, मैं स्वभाव और विभाव भिन्न भिन्न है, ये भी एक बात चलती है। तीसरी भिन्नता के विषय में ये भी बात चलती है कि दृष्टि का विषय भूत जो परम तत्व है त्रिकाली सामान्य परम्पारिणामी भाव, ये चारों प्रकार की पर्यायवाची है, उदय उत्तम सूक्ष्म और शायद चारों भावों से परिणामी भाव है तो भिन्न है, चारों में से एक भी परिणामी भाव स्वरूप में, चारों पर्याय उत्पाद के रूप में होती है और परिणामी भाव अनादि है, न उत्पाद रूप है कभी न कभी व्यय होता है। ये 3 बात होने पर भी जिसको वेद ज्ञान शुरू करना है उनको ज्ञान और राग से भिन्नता कर, बात तो चीज इसलिए थी कि अब चारू शुरू कहां से करना, वेदियां क्या से कहां से शुरू करना, तो ये 3 में से यहां से शुरू करना, ऐसा कहने का अभिप्राय समर अधिकार में भी यही बात है और ये मोक्ष अधिकार में भी यही बात है। तो ज्ञान का लक्षण हमारा सुख लिया है, अनाकुलता लिया है मोक्ष अधिकार, और राग का लक्षण लिया है आकुलता, ऐसा दो लक्षण लिया है। ऐसा क्यों लिया कि ये वेदनभूत लक्षण है, राग में आकुलता वेदने में आती है और ये आकुलता है वो स्थूल भाव है, आंखों का समझ सके, पकड़ सके अनुभव में, ऐसा एक भाव है। और ज्ञान में ऐसी आपूर्ता नहीं होती। ज्ञान कैसा ज्ञान? तो जो मात्र ज्ञान है उसमें, ज्ञान मात्र में आपूर्ता नहीं है। वरना तो ये कहेंगे कि हम तो ज्ञान करने में भी आपूर्ता करते हैं, ज्ञान होने में भी हमको तो आपूर्ता का अनुभव होता है, फिर ज्ञान करने में भी होता है। लेकिन ज्ञान के साथ जो राग है, कषाय है, उसमें आतुरता है और दोनों का एकत्व हो जाता है, इसलिए ज्ञान में आतुरता भाषित होती है, महसूस होती है। किंतु ज्ञान में, मात्र ज्ञान में आतुरता कभी नहीं है। आतुरता राग में ही होती है, ज्ञान में कभी आतुरता होती ही नहीं। इसलिए दोनों अपने वेदन से भिन्न भिन्न अनुभव में आता है। तो ऐसा जो वेदनभूत लक्षण दिया, इस वेद ज्ञान के प्रकरण समझाने में ये वेदनभूत लक्षण दिया, इसका ये मतलब निकलता है कि वेद ज्ञान ये कोई विकार शक्ति की नहीं। क्या इसका मतलब निकलता है? जैसे सुख और दुख, आतुर का दुख है, निराकुलता दुख है, तो सुख है दुख, सुख और दुख ये कोई परिभाषा की चीज नहीं, बातों की चीज नहीं, ये तो अनुभव की चीज है। जैसे लड्डू खाने की चीज है, सूंघने की चीज नहीं है, देखने की चीज नहीं है, मिठाई खाने की चीज होती है, न देखने से इसका पेट भरता है, न कोई सूंघने से इसमें पेट भरता है, चाहे इसमें सुगंध डाली हो या इसका रंग कलर अच्छा बनाया हो। वैसे सुख और दुख तो अनुभव में आने वाली चीज है, और अनुभव में आने वाली चीज को ठीक तरह से समझनी हो तो अनुभव से समझनी चाहिए। किसकी बात से उतनी वो समझ में नहीं आएगी, किसकी वो अनुभव से समझ आएगी। इसलिए कहते हैं कि राग का लक्षण आकुलता है और ज्ञान का लक्षण निराकुलता है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से भिन्न तो हमें राग का विचार नहीं करना है और ज्ञान का भी विचार नहीं करना है, लेकिन ये दोनों भाव हमारे अनुभव में आते हैं। कब अनुभव में आते हैं? निरंतर अनुभव में आते हैं। एक समय भी जीव का परिणाम खाली नहीं जिसमें राग उपस्थित न हो संसारी को, और जिसमें ज्ञान की उपस्थिति न हो, ऐसा एक भी समय खाली नहीं है। सभी समय में दोनों चलता है, समय साक्षी सदा रहेगा, सदा भी यही दिखेगा कि जो निरंतर अनुभव में आने वाले भाव है ये मिश्रित हो रहे हैं। वेद ज्ञान की प्रमिता और कुशलता से इसको भिन्न भिन्न अनुभव करने से उसकी जो वेद ज्ञान की प्रगति उत्पन्न होती है, यहाँ तो ऐसी बात भी है कि राग से ज्ञान को भिन्न करने से या भिन्न देखने से, भिन्न अनुभव में लेने की कोशिश मात्र करने से, प्रयत्न मात्र करने से किसका पता चलता है? गुरुदेव कहते हैं कि सर्व के स्वाभाविक शुद्ध आत्मा का पता चलता है, किसका लक्षण आता है वो कहते हैं। वेद तो किया ज्ञान और राग का, दोनों पर्याय हैं, और वेद करने से सर्व का पता चल जाता है, ऐसा कहते हैं। देखते बैठे देखते कहां से कहां आते हैं गुरुदेव, बात करते ही स्वद्रव्य पर आ जाते हैं। और कैसा द्रव्य है? कि सर्वज्ञ स्वभाव ही, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, राग से भिन्न पारने के प्रयास में उसका लक्ष्य हो जाता है, प्रसंग हो जाता है, एकाकार हो जाता है। लेकिन जीवन में सर्वथा भिन्न है ऐसा देखना है, ऐसा अवगत देना है कि सर्वथा भिन्न है, विचार में नहीं अवगत देना है, ये फर्क है। विचार में तो बहुत से तर्क उठते हैं और विचार में जो है वस्तु परोक्ष रहती है, तो परोक्ष में कोई रस नहीं आता है। रस रस प्रत्यक्ष में रस हमेशा होता है, फिर प्रत्यक्ष होती है इसमें जो रस होता है वो तो परोक्ष में कभी नहीं हो सकता। किसी भी प्रसंग देखो, जिस प्रसंग में आप उपस्थित नहीं हो पर ऐसे ही प्रसंग में आप उपस्थित हो तो आप देख लो कि दोनों के रस में क्या फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो ये विचार की वो पद्धति है, ये पदार्थ को प्राथमिक अवस्था में ख्याल में ले होती है। लेकिन ऐसे अध्यात्म के प्रकरण में तो फिर ये विचार की भूमिका से कुछ आगे जाना पड़ता है, सिर्फ विचार में रुकने से काम नहीं होता। तो आगे जाने के लिए क्या है, तो ज्ञान के अनुभव में आता है और राग के अनुभव में आता है। हम उसको अच्छी तरह उनकी तलाश करें, अच्छी तरह हमारे अनुभव लें, अनुभव को विचारे ऐसी बात नहीं है, अनुभव को देखे ये बात है। तो देखने का अगर थोड़ा ध्यान दिया इस बात पर, इसलिए विचार में तो जो बात चली उसका विचार हम करते हैं, जो राग चला गया और जो ज्ञान की पर्याय जटिल हो गई इसका विचार हमें नहीं करना है, ऐसे विज्ञान नहीं करना है। और ऐसे विज्ञान होता भी नहीं, ये तो घेरना का चार है। कुछ हमें तीव्र लाभ हुआ उसमें आकुलता भी हो गई, तो पीछे से इसका विचार करते हैं और ज्ञान है, सिर्फ जानने मात्र में कुछ आकुलता नहीं होती है। कैसे हम कई चीजों को जानते हैं इससे कोई प्रयोजन नहीं, कि ये खंभा है क्या प्रयोजन है, कोई आकुलता नहीं हुई। स्थूल रूप, स्थूल रूप से तो स्थूल रूप से ये बात विचार में आती है कि राग में आकुलता है, ज्ञान में आकुलता नहीं, मात्र जानने में आकुलता नहीं है। लेकिन ये सब विचार ये ज्ञान का प्रयोग नहीं है, विचार ये ज्ञान की कार्य पद्धति भी नहीं है। यहाँ तो साक्षात कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए, अगर ऐसा विचार को जो अनुभव में आ रहे हैं यही भावों को देखना है, अनुभव के काल में, बात के काल में नहीं, ये विचार की पद्धति हो गई। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि विचार पद्धति और प्रयोग पद्धति में क्या अंतर है, और कई ऐसा भी प्रश्न इस विषय में आता है कि प्रयोग के काल में विचार तो होते ही रहते हैं, तो फिर आप विचार को प्रयोग से अलग कैसे करते हो, कैसे छानते हो, कैसे मानते हो, कैसे समझते हो इस बात को, क्योंकि प्रयोग के काल में विचार होते हैं। प्रयोग कोई ऐसा निर्विचार पद्धति नहीं है, इसमें भी प्रयोग में विचार काल तो है, तो फिर बात अलग अलग कहते हैं। जो विचार है वो चीज को परोक्ष रखता है, यहाँ परोक्ष भाव की बात नहीं है, जो चल रहे हैं वो भावों की बात नहीं है, जो चल रहे हैं उनकी मापने की बात है, यही अंतर है विचार और प्रयोग है। अगर विचार दोनों काल में विचार होने पर भी दोनों में अंतर है, यही बात है, बहुत अंतर है, थोड़ा प्रयोग करके देख लेना कितना अंतर है, चमत्कार हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा चैतन्य का। ये भी कोई सही मौके पर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, सही मौके में कोई ऐसा है कोई बढ़िया प्रश्न में हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रतिकूलता मैंने ऐसे प्रतिकूलता के बीच में ऐसा प्रयोग होने का साधारण शुक्र नहीं बने, ऐसा धारण कह बने ऐसा, जैसे कोई जीवन मरण का प्रश्न हो, तीव्र वेदना का प्रश्न हो, तीव्र वेदना का प्रश्न हो, उस काल में ज्ञान में वेदना की कोई सत्ता नहीं, वेदना के परिणाम में ज्ञान की कोई सत्ता है, ये देखना है, ये देखना है, यही वस्तु स्थिति है। अज्ञानी हूं मैं इसलिए मेरे में तो भेद ऐसा भेद नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। अज्ञानी का विभाव और ज्ञान चाहे राग हो या वेदना हो, विभाव में उसका एक हुआ ही नहीं कभी, उसने अनुभव गलत किया है, जो अनुभव किया है वो गलत अनुभव किया है, उसका ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा है और विभाव विभाव रूप ही रहा है, दोनों एक हो जाता तो दोनों का नाश होता है। आत्मा का प्रमाण हो ही रहा है अनुभव में, ऐसा कर लिया है मिट्टा अनुभव, इसलिए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसा नहीं होने पर भी ऐसा अनुभव करना उसको मिथ्या अनुभव कहते हैं, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसको मिथ्या पढ़ा मैंने, मिथ्या स्व ऐसा कहते हैं, स्व मैंने पढ़ा, यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि अगर ज्ञान और राग को लक्षण भेद से सर्वथा भिन्न किया, अगर आप भिन्न करो तो आपको सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध आत्मा लक्षण आ जाएगा। वो कहते हैं गुरुदेव ने टिप्पणी दे दिया, यहां पर ध्यान रख चलते हैं, सूत्र जैसे बात चलती है, लेकिन वो कहते हैं ऐसे क्यों पता चले, उसमें ये पता चलता है कि जो वर्तमान में देखता है कि मेरा ज्ञान मैंने दिन तो कभी होगा कि जब इसमें अंकपना होगा तब राग से ज्ञान की भिन्नता इसलिए नहीं हो रही है कि राग में मैंपना अहंपना हो रहा है, इसलिए मैंपन करने वाला तो ज्ञान ही है लेकिन राग में करता है, यहां खुद का स्वरूप नहीं है, यहां खुद है ही नहीं मान कर रहा है। अगर ज्ञान में अहंपना किया, स्व की स्थापना की, मैंने अस्तित्व ग्रहण किया, राग से अलग हो जाएगा, राग से अलग होते ही उसको ये पता चलेगा कि मैं सिर्फ वर्तमान में ही अलग नहीं हूं, मैं तो तीनों काल में अलग हूं, एक क्षण का तल का अनुभव समय तो पकड़ में आता नहीं, तल को एक समय पकड़ में आता नहीं, उसको क्षणवर्ती पर्याय पकड़ में आती है, तो जिस क्षण में चाहे वो एक सेकंड हो या सेकंड के भी अल्पकाल हो पकड़ में आता है, पास पकड़ में आता है, तो उतना भी पकड़ने में आवे क्षणवर्ती भाव उस पर तो उसको स्वीकार का पता चल जाता है कि मैं सदा ही सर्वथा ही भिन्न रहता हूं, तो उतना ही पता चलता है कि मैं भिन्न रहता हूं, लेकिन मेरा भिन्न रहने का सामर्थ्य अनंत है ऐसा पता चलता है। अनंत काल में अगर मैं भिन्न रहता हूं तो ये अनंत काल का समर्थ हुआ कि नहीं हुआ, एक काल में भिन्न हूं तो ये वर्तमान काल का सामर्थ्य है, तीनों काल में अगर मेरा ज्ञान स्वरूप भिन्न रहा तो ये तीनों काल का सामर्थ्य है, तो उसका अनंत सामर्थ्य का पता चलता है। ज्ञान का अनंत सामर्थ्य कहो या सर्व के स्वभाव कहो, एक बात यहां पर केवल ज्ञान का पता चलता है, इसके पहले केवल ज्ञान कैसा है, मोक्ष तत्व कैसा है, इसका पता चलता ही नहीं, बात मोक्ष अधिकार है लेकिन क्षेत्र का पता यहाँ वेद ज्ञान से चलता है, क्योंकि त्रिकालीन सामर्थ्य जो समझ में आया, लक्ष्य में आया, तो उसके पर्याय कैसी है वो भी आप पता समझ में आ जाती है। इसलिए सर्वज्ञ स्वभावित से साधना लक्ष्य में आता है। एक वेदज्ञान करने से सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा लक्ष्य में आता है। लक्ष्य में आता है मैंने कोई थर्ड पर्सन लक्ष्य में नहीं आता है, मैं ही ऐसा हूं ऐसा लक्ष्य में आता, उसका नाम लक्ष्य है। लक्ष्य का विषय स्वयं है और लक्ष्य करने वाला भी स्वयं है, दोनों स्वयं है। ये दो भक्ति में इतनी बात नहीं है। दूसरा सिद्धांत लिया है कि जैसे जो संपूर्ण विकराल होता है वही सर्वज्ञ हो सकता है। रागी जीव सर्वज्ञ नहीं होता, अन्य मत में, अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में ये बहुत बड़ा फर्क है। अन्य दर्शन में जो भी ईश्वर की कल्पना है इसमें त्रिकाल रहता होता है, ईश्वर सबको जानता है, कोई बात भगवान से अनजानी नहीं रहती, ये बात वो लोग मानते हैं, लेकिन इसकी विकरालता का मान दिखाती है। वो ईश्वर को ऐसे जानने वाले ईश्वर को किसी न किसी प्रकार का राग होता है, आरोप कर रहे हैं। कम से कम इतना तो सही कि अपने भगवान में अपने भक्त को वो वीर के समय में मदद करता है। ये तिरुपति बालाजी से लेकर के सब चलता है यहाँ कि भगवान तो भक्त को मदद करे, पर इसलिए एक बहुत चक्कर बड़ा करता है। तो अपने भगवान को शिकार लेता नहीं है ऐसा नहीं मानते, तो ऐसा नहीं मानते। लोगों को ये भी पता नहीं कि जैन दर्शन में भी ये सर्वज्ञ बना या निकाल देता ऐसा होता है, इन लोगों को नहीं पता है। हमारे सर्वजी है उनसे पूछा, मैं आपको वैष्णव है लेकिन अपने बचा होता है, परमात्मा